कहानी का शीर्षक है बाहों का घेरा। इसमें अतृप्त कामवासना से पीड़ित स्त्री की कथा है, जो अपने को किसी के प्यार में, उसकी बाहों की जकड़न में अपना अतृप्त तन मन सराबोर करना चाहती है। उसका मन रीता रीता सा रहता है। कम उम्र में ही उसके प्रथम प्रेम को उससे छीन कर एक निष्ठुर रईस के लड़के को उसका पति बना दिया जाता है, जिसमें न सांसों की गर्मी है और न प्रेम, सब कुछ ठंडा ठंडा। जब वह अपने सामने अपने ही आयु के अनब्याहे जोड़े को उन्मुक्त और गर्मी से प्रेम करते देखती है, तो उसकी अतृप्ति और अधिक बढ़ जाती है। उसका पैर समाज की बेड़ियों में बंधा है। उस अतृप्ति को वह तृप्त नहीं कर पाती और तमाम हृदय के मनचले अरमानों के सामने उसे समझौता करना पड़ता है। वही रीता रीता घुटन भरा जीवन जीने को मजबूर होना पड़ता है। वह न तो पति में प्रेम जला सकती है और न ही अपने को ठंडा बना सकती है। उसे मन तन दोनों से समझौता करना पड़ता है, समाज से, निष्ठुर पति से। उदाहरण स्वरूप इन्वर्टेड कॉमा ओपन, 4 रात हो गई है, वह बिल्कुल नहीं सोई है। यो भी नींद उसे आती ही नहीं, यदि जलन और चुभन सोने ही नहीं देती। डैश, उसने औंधे लेटकर अपना मुंह तकिए में गड़ा दिया। वह जैसा होगा सोने का प्रयास करेगी। इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। संदर्भ ग्रंथ बाहों का घेरा, मन्नू भंडारी, संग्रह एक प्लेट सैलाब, पृष्ठ 101। कम्मो ने समझौता कर लिया अपनी उन्हीं परिस्थितियों से जिसमें उसे घुटन होती है, पृष्ठ 102। इन समझौता परस्त नारियों की संख्या मन्नू भंडारी की रचनाओं में अधिक नहीं है। कुछ नारियां तो समझौते के नाम पर नाक मुंह सिकोड़कर अपने मन की कर गुजरती हैं। बाद में उन्हें उसके लिए पछताना पड़ेगा, अथवा नहीं, उसकी वे जरा भी परवाह नहीं करती। समझौता करती नारियों की श्रृंखला में प्रमिला की माँ कहानी संख्या के पार में है। प्रमिला की माँ को उसके ससुराल वालों ने सौदा करके बेच दिया। बंटी को वापस कर उसे उसके ननिहाल में छोड़कर यह अफवाह उड़ा दिया गया कि प्रमिला की माँ भाग गई है। प्रमिला की माँ को अपनी बेटी का विद्रोह बहुत दुष्कर लगा। इससे वह अपने पिता के शहर में अपनी बेटी से मिलती है। घर भर में कोहराम मच जाता है। प्रश्न यह उठता है कि प्रमिला की माँ ने समझौता किया, एक पति की बनकर अपना जीवन गुजारने लगी। वह विद्रोह भी कर सकती है और शायद वह करती भी। विद्रोह कर वह कहाँ जाती? ससुराल वालों के पास, जिन्होंने उसका सौदा किया था, या फिर अपने संस्कारी धनी पिता के पास, जिनके संस्कार अपनी बेटी पर विश्वास करना नहीं जानते? उस पिता के पास जो उड़ाई गई अफवाह के आधार पर समाज के लिए उस बेटी की एक बार भी खोज खबर नहीं लेते, एक बार भी यह नहीं पूछते कि बेटी ऐसा कैसे हो गया? उस पिता के पास जाती जिसके लिए औलाद से भी बढ़कर समाज की इज्जत सर्वोपरि है। उसे वैश्या बनने पर मजबूर होना पड़ता है। पिता के कारण उसे नरक समान जीवन से समझौता करना पड़ा। इन्वर्टेड कॉमा ओपन। उसके ससुराल वालों ने सौदा कर दिया और उड़ा दिया, भाग गई। डैश, मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद कर डाली। डैश, इस बार उसके पिता ने एक परंपरागत उत्तर दिया, जिससे यह प्रतीत हुआ कि वह नारकीय जीवन से विद्रोह भी कैसे करे? क्वेश्चन मार्क। दाने दाने को मोहताज है तो भीख मांगे। डैश, जैसा कि वैसा फल मिलना था। मैं उसे इस घर में नहीं आने दूंगा, कभी नहीं आने दूंगा। इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। संदर्भ ग्रंथ संख्या के पार कहानी, मन्नू भंडारी, संकलन एक प्लेट सैलाब, पृष्ठ 92। यह उक्ति इस बात का अनुमोदन करती है कि पिता पिता नहीं थे, वरन समाज के बड़े उच्च वर्ग के एक विशिष्ट व्यक्ति थे। इस विशिष्ट सभ्यता और इज्जत के अहम में पितापन की हत्या हो जाती है। इसी स्थिति में प्रमिला की माँ अपने पिता के घर अपना अपवित्र शरीर लेकर आती है। वह जब आती है तब उसके पिता उसे घर में घुसने को मना करते हैं। कितना अच्छा होता पिता अपनी बेटी को नारकीय जीवन से निकालकर अपने घर में थोड़ा सा स्थान दे देते। समाज का क्या है? यदि समाज की परवाह नहीं करते तो एक स्त्री को उसके घुटने से तिल तिल कर मरने से बचा लेते। एक स्त्री को जीवन दान मिल जाए। अगला शीर्षक है अपनी ही धुन में रमी नारियां। मन्नू भंडारी के कथा साहित्य में ऐसी नारियों की संख्या भी कम नहीं है जो अपनी ही धुन में रमी हुई है। पृष्ठ 103। सोमा बुआ एक ऐसी ही नारी पात्रा है जो अपनी ही धुन में रमकर अपने दुखों को बिखेरना चाहती है पर बिखेर नहीं पाती, वे अपने कार्य को भी पूरा नहीं कर पाती। जग में अच्छा बुरा भूलकर अपने अकेलेपन को बांटते हुए भूलने का छलावा अपने आप को भटकते देना है। वह समाज की मान्यताओं, सड़े गले रीति रिवाजों और मान अपमान की कुछ भी चिंता नहीं करती। वह जो करना चाहती है करके छोड़ देती है। अपने ही धुन में रमने वाली नारियां केवल वर्तमान में जीती हैं, प्रेम करती हैं पर भविष्य की चिंता नहीं करती, अंत में मुंह के बल गिर जाती हैं। नारियों को सचेत करने का यह प्रभाव बहुत सराहनीय है, क्योंकि किसी भी धुन में, कार्य में, प्रेम में पड़ने से पहले उसका अंत में परिणाम क्या होगा यह समझ लेना सभी मनुष्यों के लिए जरूरी होता है। खासकर नारियों के लिए यह विचारना आवश्यक है, क्योंकि नारी के साथ उसके बच्चों का भविष्य जुड़ा है। अपने ही धुन में डूबी मन्नू भंडारी की पात्राएं जैसे आशा और बिन्नी अपने टूटे दिलों को अरमानों का कफन फैलाए जिंदगी को मरी हुई छाया समझने लगती हैं। मन्नू भंडारी आज के समय की भावनाओं की लड़ाई में जीत पाई या नहीं यह विवेच्य है, परंतु उनके अनछुए पक्ष में उपर्युक्त ढंग की नारियां आज है और उनका रेखांकन भी उन्होंने बिना लाग लपेट के स्वाभाविक ढंग से किया है। पैराग्राफ चेंज। नई नौकरी कहानी में रमा अपनी धुन में रमी नारियों की श्रेणी में आती है। वह नारी जीवन की बहुत बड़ी बड़ी कमियों की ओर ध्यान नहीं देती, और कभी ध्यान देती भी है तो लौट कर वहीं की वहीं पुरानी स्थिति में आ जाती है। रमा के पति को कोई नई और उच्च वर्ग की नौकरी मिल जाती है। रमा अपनी जिम्मेदारी निभाने के चक्कर में अपने पढ़ाने के काम को भी ठीक से निभा नहीं पाती। इन्वर्टेड कॉमा ओपन, बिना तैयार किए पढ़ाना लगता है जैसे लड़कियों को चीट कर रही हूँ। 2 घंटे का समय भी मुझे अपने लिए नहीं मिलता। इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। संदर्भ ग्रंथ नई नौकरी कहानी, मन्नू भंडारी, संग्रह एक प्लेट सैलाब, पृष्ठ 14। इस तरह से स्पष्ट होता है कि मनुष्य के भिन्न भिन्न स्वभाव होते हैं। ये स्वभाव वास्तव में परिस्थितियों से संचालित होते हैं। मन्नू भंडारी की कहानियों के नारी चरित्रों को समझने के लिए उनके मात्र बाहरी व्यवहार पर ही दृष्टिपात नहीं करना चाहिए, वरन उनकी परिस्थितियों और उनके मनोविज्ञान की दृष्टि से भी उन्हें देखना चाहिए, तभी हम उनका मर्म समझ पाएंगे। कोई अपनी धुन में ही रमी रहती है तो कोई समझौते को अपना जीवन की नियति मान बैठती है, कुछ परंपराओं से संघर्ष कर जीतने के प्रयास में लग जाती है और कभी कभी जीत भी जाती है। समाज से, अपनी घुटन से, सड़ी गली परंपराओं से जीत कर वे अपने मन की करती हैं जिसमें उन्हें संतोष मिलता है। पैराग्राफ चेंज। महानगरीय बोध के साथ यथार्थ जीवन का सामंजस्य करते हुए समस्याग्रस्त नारी पुरुष के साथ सामंजस्य स्थापित कर जीवन जीना चाहती है, यानी उसकी राजनीतिक चेतना के अंतर्गत सिर्फ नारी होना ही निहित नहीं होता। जब तक वह सक्रिय नहीं है तब तक वह एक सामान्य नारी है। पृष्ठ 104। पुरुष सत्ता के प्रति पूर्ण समर्पित, परंतु कर्म क्षेत्र में उसे आक्रामक दृष्टिकोण अपनाना ही पड़ता है। पुरुष वर्ग की ही भांति उसे बहुत से कामों को करना पड़ता है। यहाँ पर नारी का स्वयं का आत्मस्वरूप विभिन्न टुकड़ों में विभक्त होता है। मनु भंडारी ने अपने कथा साहित्य की इन्वर्टेड कॉमा ओपन, एक कमजोर लड़की की कहानी इन्वर्टेड कॉमा क्लोज में एक ऐसी लड़की के स्वरूप को उभारने का प्रयास किया है जो परंपरागत संस्कारों से मुक्त होकर स्वतंत्र एवं उन्मुक्त व्यक्तित्व को ग्रहण करती है। साथ ही वह अपने प्रेमी के साथ सामंजस्य स्थापित करना चाहती है। रूपा प्रस्तुत कहानी की नायिका है जो गांव के परंपरागत संस्कारों में पलती है, बाद में माँ की मृत्यु के उपरांत अपने मामा के यहाँ उन्मुक्त एवं स्वच्छंद वातावरण में विचरण करती है। रूपा अपना प्रेम संबंध ललित के साथ स्थापित करती है। ललित के विदेश चले जाने पर रूपा के पिता बिना उसकी सहमति के ब्याह रचाते हैं, जिसे लाख विरोध के बावजूद उसे स्वीकारना पड़ता है, क्योंकि रूपा की सबसे बड़ी कमजोरी उसका दब्बू होना है। ललित विदेश से लौटने के बाद सारी बातों से अवगत होता है। जब उसे यह मालूम होता है तो उसका मन महसूस उठता है और वह रूपा को इस जीवन से उबारने का निश्चय करता है। रूपा स्पष्ट कहती है इन्वर्टेड कॉमा ओपन, नहीं ललित, तुमसे दूर रहकर ही कमजोर रहती हूँ। डरो मत, एक बार कमजोरी का जैसा फल भुगत चुकी हूँ, उससे जन्म भर के लिए सबक मिल गया है। इन्वर्टेड कॉमा क्लोज संदर्भ ग्रंथ मैं हार गई कहानी संग्रह मन्नू भंडारी कहानी एक कमजोर लड़की की कहानी पृष्ठ 65। परिणामतः यहाँ नारी की भाषा सकारात्मक के बजाय नकारात्मक ही अधिक है। इन्वर्टेड कॉमा ओपन वेद पुराण संहिताएं एवं सामाजिक ग्रंथ हर जगह इसी पुरुष की प्रशस्ति है। पुरुषों की श्रेष्ठता की यह धारणा इतनी प्रबल है कि हम इससे अलग सोच ही नहीं सकते। इन्वर्टेड कॉमा क्लोज संदर्भ ग्रंथ हंस 100वां अंक औरत उत्तर कथा बाहर और भीतर की दुनिया डॉक्टर प्रभा खेतान पृष्ठ 69 नवंबर दिसंबर 1994। कन्या ठंडे उच्छ्वासों के बीच जन्म लेती है। उसकी पहली रुलाई सुनकर एक ही उदास आवाज गूंजती है कि बेटी ने जन्म लिया है। आधुनिक युग में कन्या के जन्म लेने की भी आवश्यकता नहीं, क्योंकि स्कैनिंग के द्वारा भ्रूण के सेक्स का निर्धारण गर्भावस्था में ही हो जाता है। इन्वर्टेड कमापन यदि लड़की है तो समाज की परिवार की पिता की और बहुधा स्वयं गर्भ धारण करने वाली जननी की पहली प्रतिक्रिया है हटाओ इसे खत्म करो। दूसरी हुई तब किसी भी हालत में नहीं चाहिए। इन्वर्टेड कॉमा क्लोज संदर्भ ग्रंथ वही अधिकांश आज औरत मात्र बच्चा पैदा करने वाले एक यंत्र की भांति है। इसके सिवा और कुछ भी नहीं। क्या फर्क पड़ता है कि एक नहीं अनेक गर्भ धारण होगा और कभी न कभी बेटा तो आएगा ही। यदि बेटा पैदा नहीं हुआ तो टेस्ट ट्यूब का जन्मा बेटा ही सही। पृष्ठ 105 पितृसत्ता अपने को मजबूत बनाने के लिए पहले धर्म का सहारा लेती थी यानी धर्म पर टिकी थी, किंतु आज वह विज्ञान पर आधारित है। जहाँ तक पितृसत्ता की बात है इसके संबंध को कैट मिलेट अपने शब्दों में लिखते हैं। इन्वर्टेड कमापन हम पितृसत्तात्मकता का संबंध शक्ति के साथ जोड़ने के आदि नहीं है। इसके समाजीकरण की व्यवस्था इतनी संपूर्ण है, इसके मूल्यों पर इतनी मुकम्मल सहमति है और यह मानवीय समाज में इतने लंबे समय से व सार्वभौमिक सार पर प्रचलित रही है कि इसे स्वयं पर लागू करने के लिए हिंसा की जरूरत कम ही होती है। अतीत में इसकी पाश्विकताओं को हम अमूमन मोहक या प्राचीन रिवाजों के रूप में देखते हैं। मौजूदा क्रूरताओं को कोई सामान्य महत्व देने के बजाय हम उन्हें विकृत या अपवादी व्यवहार के रूप में व्यक्तिगत विचलन का परिणाम मानते हैं। यदि यह आपातकाल में तथा आतंक के सतत उपस्थित औजार के रूप में शक्ति के शासन पर निर्भर नहीं रहा होता तो सबके बावजूद अन्य वर्चस्ववादी विचारधाराओं ब्रैकेट में इस मामले में नस्लवाद और उपनिवेशवाद काफ़ी हद तक इसके समान है की तरह ही पितृसत्तात्मक समाज में नियंत्रण अपूर्ण बल्कि गैर कारगर हो गया होता। पितृसत्तात्मक मानसिकता ने औरत को लेकर ऐसी तर्क व्यवस्थाएं निर्मित की हैं जो अपने उद्देश्य को भली भांति पूरा करती है। ये पारंपरिक विश्वास अभी भी हमारी चेतना में पैठ बनाए हैं और हमारे चिंतन को प्रभावित करते हैं। एक सत्ता व्यवस्था जब पूर्ण वर्चस्व की स्थिति में हो तो उसे जोर शोर से अपने मंतव्य जताने की जरूरत नहीं रह जाती। इन्वर्टेड कॉमा क्लोज संदर्भ ग्रंथ हंस 100वां अंक नवंबर दिसंबर 1994 औरत उत्तर कथा लेख यह प्रश्न अवांतर नहीं पृष्ठ 41। आधुनिक परिवेश में विज्ञान की मदद से कन्याओं की भ्रूण में ही हत्याएं की जा रही हैं। यदि भूलवश वे कहीं पैदा भी होती हैं तो कुपोषण की शिकार बनकर मृत्यु को प्राप्त होती है। विज्ञान भी स्वीकार करता है कि नारी के गर्भ की संतान किस पुरुष की देन है इसका निर्धारण करना कठिन है। जिसके हाथों शक्ति सत्ता और संपत्ति रही है वह पुरुष कभी भी नहीं चाहता कि उसकी मृत्यु के पश्चात यह सब कुछ अन्य पुरुष की संतान को मिले। इसीलिए पिता पुरुष के मन में सत्ता और संपत्ति की चाह निरंतर बनी रहती है। इसी के वशीभूत पुरुष न केवल इस लोक में सब कुछ भोगने का प्रयास करता है बल्कि परलोक की कामना कर नई व्यवस्थाओं और नए संस्कारों को भी जन्म देता है और सोचता है कि मेरे इस दुनिया से चले जाने के बाद कोई न कोई मेरी संपत्ति की देखरेख करता रहेगा और मेरे लिए स्वर्ग में भी खर्च भेजता रहेगा। वह यह भी सोचता है कि मेरे जो काम अपूर्ण रह गए हैं उस कार्य को मेरी अपनी संतान पूरा कर सकेगी। इसके लिए यह जरूरी है कि नारी केवल अपने पति के ही बीज को धारण करे, अपने आप में यह बहुत कठिन शर्त है, क्योंकि स्वभावतः आज नारियां भी पुरुषों की भांति स्वच्छंद हैं, पृष्ठ 106। लेकिन नारियों की स्वच्छंदताओं को नियंत्रित और नियमित करना अनिवार्य है। स्वच्छंद पुरुष के लिए तो केवल एक ही नारी काफी नहीं होती, बहुपत्नी और बहुसंतान की आवश्यकता का अन्य कारण यह भी है कि संपत्ति अर्जित करने के लिए पुरुष को अपने ही खून के हिस्सेदारों, विश्वस्त हाथों की जरूरत है। नारी को नियंत्रित करने का एक अन्य कारण यह भी था कि शायद पुरुष इसी शक्ति से भयभीत हो गया था। इसके लिए यह जरूरी बन गया कि नारी वर्ग को कमजोर बनाया जाए। यह सत्य ही कहा गया है कि नारी को एक बार सर चढ़ा लेने पर उतारना कठिन हो जाता है। सबसे मजेदार बात यह है कि नारी शक्ति का सबसे पहले ऐलान पुरुषों ने ही किया था, देवी के रूप में, शक्ति के रूप में, दुर्गा के रूप में। इस मिथ्या की शल्य क्रिया करने की आवश्यकता है। उमा ब्रैकेट में पार्वती ने शंकर की तपस्या की। तपस्या से खुश शंकर ने वर मांगने को कहा तो अपने आप में पूर्ण पार्वती ने वर मांगा, शिव का सानिध्य मांगा। तर्क कहता है कि शिव भी तो अर्धनारीश्वर है, वे भी तो अपने आप में अपूर्ण थे, मगर उन्होंने तो पार्वती के लिए तपस्या नहीं की, वे तो सिर्फ जगत के कल्याण की कामना करते हैं, जबकि उमा सिर्फ शिव के लिए कामना करती है। आज के युग में विशेषकर नारी संबंधी नए मुद्दों को उठाया जा रहा है। भारत यदि विश्व संस्कृति को स्वीकारता है तो नारियों को भी दुनिया की नज़र में ऊंचा उठाना होगा, लेकिन भीतर कुछ खटक रहा है। हमारी असली लड़ाई तो नारी मुक्ति की है। इन अधूरे समझौते से काम नहीं चलेगा। इसके लिए संस्कृति में बदलाव लाना होगा और नारी विरोधी संस्कृति को खत्म करना होगा। नारी समस्या को समझने के लिए हमें यह जरूरी है कि हम अपनी जातीय स्मृतियों को दूर दूर तक टटोलें।